ओम शांति।
संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए या किसी भी विशाल कार्य के लिए जो ऊंच लक्ष्य रखा जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन में चैलेंजेस को, चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है और अपने सिद्धांतों पर भी अडिग रहता है, उन सिद्धांतों के अनुसार लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, अपनी मनोस्थिति को, अपने मनोबल को हर परिस्थिति में यथावत रखता है, एक रस रखता है, अप्रभावित रखता है, वो ही अनेक आत्माओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत, आदर्श मूर्त बन जाता है। वैसे भी हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे देशभक्त हुए हैं, राष्ट्रप्रेमी हुए, राष्ट्रभक्त हुए हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनकी देशभक्ति के जज्बे को हमेशा दुनिया सलाम करती रही, उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं रही। हर तूफान को तोहफा समझकर वो आगे बढ़ते रहे। आज़ादी, चाहे आज़ादी के क्षेत्र में हम देखें, चाहे हम भक्ति के क्षेत्र में देखें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखें, चाहे व्यापारिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में मनुष्य संघर्षरत होना ही पड़ता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे मुरली के ऊपर, जो सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से संबंधित है, सहनशीलता, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। इससे पहले हम सब ने सुना हिम्मत का जो पहला कदम था समर्पण था, और ये दूसरा कदम हिम्मत का सहनशीलता। तो ये मुरली है 30 जनवरी 1988 की। तो इस मुरली से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। इसमें ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो हमारे में अनेक शक्तियों का संचार करती है, मन के कोने में जो अंधकार है उसको समाप्त कर देती है, जो भी छोटे मोटे व्यर्थ संकल्पों के अंदर में एक सैलाब है या व्यर्थ संकल्पों का कोई कोने में अंधकार है, उससे हम सहज निकल जाते हैं, आत्मा में जैसे एक ऊर्जा आ जाती है। तो ये मुरली 30 जनवरी 1988 की है, ओम शांति भवन में चली हुई मुरली है। तो इसमें ब्रह्मा बाबा का जो पहला कदम है उसके पर भी बाबा ने जिक्र किया है, और दूसरे कदम पर भी बाबा ने विस्तार पूर्वक हमको बहुत सारी बातें सिखाई हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कितना कुछ सहन किया, लेकिन उनकी अवस्था कैसी रही, और तुम बच्चों को भी उससे क्या सीखना है, कैसे अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है। ये सब बातें हमारे जैसे एक मन के अंदर ऐसा शक्ति पैदा कर देती हैं, ऐसी शक्ति पैदा कर देती हैं जो सोई हुई आत्मा में एक नई चेतना का संचार होता है। तो आज कौन किससे मिल रहा है बताएंगे पहले आप? हाँ, आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा अपनी सबसे पहली रचना को देख रहे हैं। कौन सी रचना? वो श्रेष्ठ रचना। तो बाबा कहते हैं पहली रचना तो ब्रह्मों की है ही है, लेकिन उसमें से भी पहली रचना में भी श्रेष्ठ कौन है? पहला नंबर किसको देंगे? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा पहली रचना क्यों हुए, उसके भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। ये हर चीज़ में ब्रह्मा बाबा नंबर वन रहा, नंबर वन के कारण ही ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है, है ना। और इसका यादगार भी माउंट आबू में है, आदिदेव के नाम से, दिलवाड़ा में। आपने देखा होगा दिलवाड़ा मंत्र में आदिदेव के नाम से, और आदिदेव अर्थात आदिरचता भी है, सृष्टि का आदिरचता कहते हैं ना। ब्रह्मा ने संकल्प किया तो सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि रची, संकल्पों से सृष्टि रची। तो ये सृष्टि के ब्रह्मा बाबा नई सृष्टि के पहला नंबर का देव भी कहा गया, क्योंकि फिर नई सृष्टि के पहली आत्मा कौन आती है? देव के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आती है, तो आदिदेव भी कहा जाता है। और ब्राह्मण आत्माओं के रास्ता भी ब्रह्मा बाबा, क्योंकि हर ब्राह्मण का अलौकिक पिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इसलिए दोनों समय के आदि, चाहे नई सृष्टि के आदिकाल के, चाहे ब्राह्मणों की सृष्टि के आदिकाल के, अलौकिक पिता अथवा रचता ब्रह्मा बाबा है, इसलिए बाबा को आदिदेव कहते हैं। और ब्रह्मा ही आदि से, आदि में क्या होता है? कर्मातीत फरिश्ता। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा कर्मातीत फरिश्ता स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया, है ना। इसलिए तब से अव्यक्त वतन में बैठ के बाबा हम सबकी पालना कर रहे हैं, अव्यक्त रूप से हम सबको भी, हमारी स्थिति को भी अव्यक्त बनाने में तत्पर हैं। हम सब ने देखा ना शांति स्तंभ पर लिखा हुआ है, शांति स्तंभ पर आप जाएंगे तो बिल्कुल फ्रंट में पीस ऑफ टावर लिखा है, जहाँ टावर ऑफ पीस लिखा है तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि अभी भी अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों की स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर हैं। तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता में भी नंबर वन बन गए फरिश्ता। सो तो बाबा ने कहा इस कौन सी विधि से बने, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया है ना, और आपको भी फॉलो किसको करना है, और इसके लिए पहला कदम था समर्पणता। हर बात में ब्रह्मा बाबा की समर्पणता नंबर वन में रही, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, धक से एकदम सारा यज्ञ में समर्पित कर दिया। दूसरा कोई संकल्प नहीं सोचा, क्यों करे कैसे होगा, नहीं तो उस टाइम में इतने बाबा रॉयल घरानों से ताल्लुकात रखते थे, इतना रॉयल बिजनेस था, हीरे जवाहरात का बिजनेस, और राजा महाराजाओं से बाबा के इतने अच्छे संबंध, जो राजाएं बाबा को सर्टिफिकेट देते थे कि आपको राजा होना चाहिए था, इतनी रॉयल्टी बाबा में दिखाई देती थी, वो पर्सनैलिटी दिखाई देती थी। तो देखो बाबा ने अपना धक से, जैसे शिव बाबा का आदेश हुआ समर्पणता के लिए, तो बाबा ने एक धक से कुछ देखा नहीं, अपना तन मन धन संबंध मर्ग सब कुछ समर्पित कर दिया और यज्ञ के नाम अर्पण कर दिया, जो बताते ना 8 बहनों की कमेटी बनाई और सब उनके नाम से समर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया। तो समर्पणता का पहला कदम था। फिर दूसरा कदम जो आज हम जिक्र करेंगे, हिम्मत का दूसरा कदम, वो है सहनशीलता। अब जब समर्पण तो हो गए, लेकिन जब फिर से यात्रा शुरू हुई इस यज्ञ की, बिघ्न तो फिर शुरू हुए वहां से आना, क्योंकि ऐसी ऐसी धारणाएं थी, ऐसी ऐसी बाबा की शिक्षाएं थी, ऐसी बातें थी जो एकदम नई बातें थी, संसार के ज्ञान से बिल्कुल अलग, शास्त्रों के ज्ञान से बिल्कुल अलग, तो वो सुन के लोगों को अचंभा लगता था। समर्पण हुए, वर्षा भी मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला, बाबा कहते सबसे जास्ती गालियां मिली बाबा को, है ना। बाबा कहते चाहे हम बच्चों को भी गालियां मिली है, लेकिन हम बच्चों को भी इनडायरेक्टली किसको जाती थी गाली मिलने, वो तो ब्रह्मा बाबा को ही मिलती थी, क्योंकि जब भी कोई हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं ना, इनको बिगाड़ दिया ब्रह्मा कुमारियों ने, इनको जादू लगा दिया, ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही सबकी दृष्टि जाती है, संस्था का संस्थापक कौन है, सबसे पहले जरूर उन्हीं के ऊपर नजर जाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा गालियां ब्रह्मा बाबा को पड़ी। तो बाबा कहते गालियां खाने में भी नंबर वन रहे, तो जितना भी गुस्सा किया, क्रोध किया, बाबा के ऊपर ही करते रहे, जो बाबा कितने रायल कुल के जीवन में एक भी अपशब्द नहीं सुना होगा पहले, लेकिन फिर गालियों की बरसात हुई तो उसमें बाबा कितने नंबर वन रहे, उसमें सर्व के स्नेही थे, इतना स्नेह बाबा थे, देते थे लोगों को कि स्नेह में सब लोग पिघल जाते थे, जो लोग इतने स्नेही थे, इतने दोस्त थे, वो ही बाद में दुश्मन बन गए, है ना, और अलौकिक जीवन में दुश्मन बन गए, फिर अत्याचार हुआ इनडायरेक्टली, तो कितना बाबा ने सहन किया, भले हम बच्चों को गालियां पड़ती थी, लेकिन मुख्य रूप से तो वो सारा जो ध्यान है वो बाबा के ऊपर ही आता था। ऐसे हम सबके जीवन में अनुभव है, हर एक को अनुभव होगा कि कैसे जब ज्ञान में आते हैं तो कितना गालियां सुननी पड़ती हैं, तो सारा जो गालियां सुनने का भी बाबा के ऊपर ही सुनाते थे बाबा। तो बाबा हर परिस्थिति में जो है एक रस रहे, चाहे कोई प्रशंसा करे या मुस्कुराए भी, चाहे कोई गला नहीं करे, लेकिन हर परिस्थिति में एक रस, चाहे किसने अपशब्द बोले, क्रोधित होके गुस्से से कुछ भी बोला, लेकिन बाबा ने मन से भी ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिसके उन्हें चेहरे पर कोई मुरझाएश के चिन्ह हो, चेहरा मायूस हो, उदासी वाला हो, नहीं, चेहरे सदा मुस्कुराता हुआ सहनशील। और कितनी सहनशील, ऐसा नहीं कि कोई हमारी महिमा करे, प्रशंसा करे और हम खुश जाएं, इसको सहनशीलता नहीं करेंगे, लेकिन चाहे कोई दुश्मन है, कुछ भी अपशब्दों की बरसात करे, लेकिन हमारे चेहरे के ऊपर उसका कोई भी हाव भाव नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं सहनशीलता। तो ये बाबा ने करके दिखाया ना, तो हमको भी वही करना है। तो ये सहनशीलता, चाहे कैसे भी दुश्मन आत्मा थी तो उसको भी कैसे देखा, शुभ भावना से, शुभ कामना से, रहम दिल से, है ना, और उस बदलाव में बाबा की व्यवहारिकता में कोई फर्क नहीं आया। जैसे बाबा कहते हैं ना, एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे यादगार शास्त्रों में क्या देते हैं, महावीर हनुमान को दिखाते हैं कि पहाड़ को भी हथेली पर ले आए, तो बाबा के आगे भी ऐसी पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ आई कि बाबा ने भी उन परिस्थितियों को, पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी एक गेंद की तरह स्वीकार करके, जैसे उनको भी विघ्नों को तूफानों को भी तोहफा समझ लिए। अर्थात छोटी छोटी बातें जीत हुई, बड़ी बड़ी बातें छोटा खिलौना के रूप में उनको खेल की रीति से पार कर लिया। बड़ी बात को भी छोटी बात समझ लिया, हल्का करके पार निकल के उनके, जैसे उनके लिए कोई कुछ बात थी ही नहीं, क्योंकि अनुभव ही है बाबा, क्योंकि बाबा को पता है कि ये रास्ता चुना है तो इसमें तो आएंगे। इसलिए कहते हैं ना, सिरे ओखली में गया तुम उसने से क्या डरना। छोटी छोटी परिस्थितियाँ बड़ी बड़ी परिस्थिति को छोटी परिस्थिति में तब्दील कर दिया। तो ऐसे आगे बढ़ते गए और ऐसे बाबा सहनशील, माना किसी भी बात का विस्तार नहीं किया। जीवन में परिस्थितियाँ भी आई, उनको नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, दिल गया कि कोई बात नहीं, पहले भी आई थी। तो हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थितियाँ आती है तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, बस नथिंग न्यू को पाठ। लेकिन इसके लिए बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान चाहिए, विस्तार चाहिए उसका, ताकि समय आने पर वो ज्ञान अपने आप काम करता रहे। जैसे हमको मान लीजिए कोई बीमारी होती है और दवाइयाँ हमारे पास हर बीमारी की पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बीमारी कौन सी, बीमारी की कौन सी दवाई कहाँ रखी है, अगर वो हमको विस्मृति हो जाए तो दवाई होते हुए जैसे नहीं है, तो उसका हम फायदा नहीं ले सकते। इसी तरह से हम हर जीवन में जो परिस्थिति आती है, नथिंग न्यू, उसको हम तभी स्वीकार कर सकते हैं, नथिंग न्यू की स्मृति तभी आ सकती है, बिनती तभी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप तभी लगा सकते हैं, जब हमको निरंतर हमारी बुद्धि में ज्ञान की ज्ञान सागर से जुड़े, हमारा उससे कनेक्शन है। जैसे आज बाबा ने बताया ना कि कन्फ्यूज क्यों होते हैं, कनेक्शन लूज हो जाता है ना, इसलिए हमारा कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्पार्किंग ना होती रहे। तो निरंतर हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ रहता ना, इनके वरदान में ये कनेक्शन एक बाप से है। तो ये बात है, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप की बिंदी भी तभी लगेगी, विस्तार को सार में ला सकेंगे और सदा स्थित रहेंगे उसमें। माना हम इधर उधर की बातों में जाने के बजाय अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित रहें, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहें, कुछ ना कुछ योग का अभ्यास करते रहें, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी और हर परिस्थिति से हम सहज पार हो सकते हैं। नहीं तो विस्तार में क्या होता है, हमारा टाइम जाता है, बाबा कितनी शक्ति जाती है, बेस्ट होती है, एनर्जी जाती है ना। और सार विस्तृत होने से हम एक बाबा की याद में बैठे हैं, तो उस याद की जो शक्ति है, उस याद की जो वाइब्रेशन है, उस याद के जो वायुमंडल एक क्रिएट होगा, तो उस वायुमंडल से परिस्थितियां भी सहज ही छोटी हो जाएंगी। तो उन परिस्थितियों को भी हम सहज ही पार कर लेंगे, उनसे घबराएंगे नहीं। बाबा कहते ना, जो बच्चे हैं परिस्थितियों से, जो सहनशील बच्चे होते हैं, वो परिस्थिति घबराएंगे नहीं, वो गहराई में जाएंगे। अर्थात अपने गहराई में जाके उन परिस्थितियों से निकलने का सहज ही कोई ना कोई सूत्र निकाल देंगे, कोई ना कोई विधि निकाल देंगे, परिस्थितियों में से उलझे नहीं रहेंगे, गहराई में जाकर वो सार में ले आएंगे। और जो सहनशील नहीं है वो क्या करेंगे, वो विस्तार में चले जाएंगे, और जो सहनशील है वो शॉर्टकट रास्ते में जाएंगे ना। तो बाबा ने, बाबा कहते फिर इसलिए वो मौज में रहेंगे, कौन, जो सार वाले होंगे, वो गहराई में जाएंगे और सार के मान भरपूर शक्तिशाली ताकतवर। इतनी सुंदर सुंदर बाबा हमको चीजें देते हैं, और जो विस्तार में जाएगा वो क्या करेगा, बाबा कहते हैं वो उछलता रहेगा, जैसे कहते हैं ना अध जल गगरी शलकत जाए, तो शलके की तय क्या होगी, हिलेगी डुलेगी। तो ऐसे जो व्यक्ति विस्तार में जाएगा, उछलेगा, हाँफेगा, फिर सांस चढ़ेगी, थकेगा, थकावट हो गई, फिर निराश हो जाएगा। देखो कितने एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बाबा हमको समझा समझा के हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो सहनशील जो इन सब बातों से बच जाता है, विस्तार में ज्यादा नहीं जाएगा, हर को सार में ले आएगा, गहराई में जाएगा, घबराएगा नहीं। कितनी निशानियां बताई सहनशील आत्मा की, सदा मौज में रहेगा, उछलेगा नहीं, उसका उड़ता रहेगा। तो ब्रह्मा बाबा जैसे बताए, हर परिस्थिति में अचल अडोल सहज रूप में कैसे मौज रहे, मेहनत, कोई मेहनत नहीं लगी उनको जीवन, क्योंकि बाबा को हर चीज का पता चल गया, कैसे 14 साल बाहर निकल गए तपस्या के, कुछ कैसे छोटे छोटे बच्चे आए, उनके जीवन को भी मौज से संपन्न कर दिया, मौज मौज से तपस्या की, मौज मौज से सारी सेवा की। बाबा ने बताया ना, यहाँ चप्पल भी सिलाई करवाई, अर्थात मोची भी बनाया, मैकेनिक भी बनाया, माली भी बने, कितनी सारी बातें, लेकिन मौज से किया उन्होंने, कुछ मेहनत नहीं लगी उनको। गोबर के गोले भी बनाए, कहाँ नाच नाश से पलने वाले, अर्थात एकदम जिसको कहेंगे वैभव सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले तो दादियों के जीवन को अगर हम देखें तो कितने वैभव में पलने वाले हैं, नाश से पलने वाले हैं, एकदम गलीचों पर पलने वाले हैं, जिनके इर्द गिर्द नौकर घूमते हों, और वो छोटे छोटे बच्चे आके इस यज्ञ में तपस्या करें, गोबर के गोले बनाए, चप्पल सिलाई करें, तो बाबा ने उतने उनको कितना प्यार से सींचा होगा। बाबा ने अपने अंदर सहनशीलता की शक्ति को किस हद तक अपने अंदर समा लिया, एकदम बेहद तक ही समा लिया अपने अंदर। तो जैसे उन बच्चों को भी वो सहन शक्ति उनके अंदर अपने आप आएगी, तभी तो क्रिकेटिंग के इसमें भी वो बच्चे कैसे अपने आप धूप में खड़े रहे, छोटे छोटे बच्चे, कितनी बड़ी बात है। तो हमें सब सीखने को मिलती है कि उन छोटे छोटे बच्चों ने भी इतने, जो समाज के मुखिया लोग थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित थे वहाँ समाज के लोग, गणमान्य नागरिक थे, उनके सामने भी वो धूप में पूरा पूरा दिन खड़े की सहन शक्ति कहाँ से आ गई। तो बाबा ने अपने जीवन चरित्र से हर एक आत्मा को सींचा है, सीखने वाली बातें मिलती है ना। तो फिर वो जीवन उनको जैसे मौज वाला लगा, मूंजे नहीं, मौज का वाला जीवन लगा, और जो मूंजते थे वो छोड़ के चले गए, और जो मौज में रहे उन्होंने अपने जीवन से दूसरों के जीवन को ही मौज वाला बना दिया। नहीं तो आजकल बाबा क्या होते हैं, एग्जाम्पल होता है कि अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा भी स्थूल काम करना पड़ता तो क्या करते हैं कि हमने इसलिए थोड़ा जीवन दिया है ना। आजकल होता ना, अगर कोई ज्यादा पढ़ लिख जाए तो कहते हैं हमको जी भाषण करना है, हमको ज्यादा स्थूल सेवा नहीं होती है। तो बाबा ने तो हमको इतना, हमारे अंदर शक्तियां भरी हैं हर चीज के लिए, हमको एक सहज विधि बताई है, क्योंकि जीवन कितना ऊंचा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज की जीवन है। और मौज कौन सी है, तपस्या की मौज है, शुद्ध संकल्पों के में अपने मन को, जैसे मन में शुद्ध संकल्पों का रमण होता रहे उससे मौज मिलेगी। मौज कोई हमको भाषण करने से नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर कितना भाषण चल रहा है, अर्थात उस भाषण से हमको कितनी वासना आ रही है, उन संकल्पों की भासना आ रही है, उन संकल्पों से जैसे आत्मा तृप्त हो रही है। कितने ऊंचे ऊंचे संकल्प हैं, जो भी मूल्य का हर महावाक्य है, जैसे भगवान की वाणी है, अवतरित हो रहे हैं एकदम निराकारी लोक से, ती भरी हुई है इनमें। तो उन महावाक्यों को अपने में आत्मसात करने के लिए अगर हम थोड़ा से प्रसाद करें, जैसे मौज का जीवन हो गया, चाहे फिर हम स्टेज पर स्पीच भी करें तो भी एक ही बात है, चाहे स्थूल सेवा करें तो भी मौज ही मौज है ना, हर बात में मौज है। तो ब्राह्मण ना मौजों की जीवन है, मूंजने वाले नहीं है। नहीं तो ये नहीं सोचना हम तो सरेंडर इसलिए आए थे क्या, या हम यहाँ सेवा में इसलिए आए हैं क्या, स्थूल काम करने के लिए नहीं है ना। कोई कोई को होते हैं, कोई सेवा के लिए विशेष बोलते हैं, हमको ये सेवा मिले ना तो अच्छा रहेगा, ये सेवा मिले ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमने देखा मधुबन में भी, आप देंगे कि इतने भाई यहाँ समर्पित हैं, हमने देखा है इतनी इतनी उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, ऊंच पढ़ाइयाँ, और भंडारे में सेवा करते हैं, बड़े मनोयोग से, बड़े प्यार से पूरी जिंदगी गुजार दी। कितना बाबा के प्रति प्यार है, एक सोचने वाली चीज है, वो सीखने वाली चीज है, पूरी लाइफ लगा दी उन्होंने। कई तो ऐसे मधुबन वाले भी हैं जो कभी घर भी नहीं गए हैं, पूरा समर्पण हो के एकदम तन मन से हड्डी हड्डी सेवा करते हुए अपने जीवन से जैसे अनेकों को पाठ पढ़ रहे हैं, भले वो भाषण नहीं करते हैं, भले वो सामने नहीं आते हैं, स्टेज पर नहीं आते हैं, लेकिन वो मधुबन निवासी ऐसी बाबा के अनमोल रत्न है, अमूल्य रत्न है। हमें बहुत चलते फिरते अपने व्यवहारिकता से हमें हजारों बातें सिखा देते हैं, तो नेचुरल सेवा हो जाती है उनकी जीवन, जैसे मौज की जीवन, मूंझा हुआ जीवन ही है। मूंझा हुआ जीवन होगा तो चेहरे पर पता है ना, बाबा ने मुरझाइश के चिन्ह होंगे, उदासी के चिन्ह होंगे। इतनी ब्राह्मण बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार बनना क्या है, मौज का जीवन, दिल की मौज है, स्थूल मौजों की बात नहीं है। हम जितने मर्जी साधन इकट्ठे कर ले उनमें मौज नहीं समाई है, मौज तो हमारे संकल्पों में है, शुद्ध संकल्पों में है, शक्तिशाली संकल्पों में है, मुरली के संकल्पों में है, श्रेष्ठ चिंतन के संकल्पों में है, तपस्या के संकल्पों में है, पवित्रता के संकल्पों में है, वैराग्य के संकल्पों में है। जितना हम इन संकल्पों में अपने आप को बिजी रखते हैं तो जैसे आत्म मौज में रहती है, उड़ती है, संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाती है, बाबा के प्यार में लवली जो रहती है खो जाती है, जैसे एकदम बाबा से चिपक जाती है, कंबाइंड हो जाती है। बाबा ने मुरली में मातों से बात की ना, माते अर्थात अर्थात कंबाइंड रहने वाली, और जो भगवान से कंबाइंड हो गया उसको माया क्या करेगी। जिस बच्चे ने बाप का हाथ पकड़ लिया है तो दूसरा लोग कोई क्या करेगा उसको, सुरक्षित है तो बाप की छत्रछाया में। तो शिव शक्तियां अर्थात सदा मौज में रहने वाली हैं, बाप के साथ कंबाइन, घर बैठे भगवान मिल गया। माता से बात की ना बाबा ने कि घर बैठे भगवान मिल गया, सोचा था कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन भगवान क्यों ने कितने पदमा पदम भाग्यवान को। तो मौज की जीवन में मूंझने वाले जीव नहीं है, जो मूंझेंगे तो वो सोचेंगे, वो खुद भी मूंझेगा और दूसरों को मूंझा देगा है ना, क्योंकि जिंदगी मूंझने में गवा दी है। तो अगर अभी भी हम मूंझते हैं तो मूंझने को छोड़कर हमको मौज की जीवन मिली है ना। मन मूंझा हुआ तो क्या होगा उसका, फिर वो मूंझे हुए जीवन का, हमारे जीवन का प्रभाव दूसरों पर अगर पड़ता है तो जैसे सर्विस की जाए डिसर्विस हो जाती है, तो ये भी हमको चेक करना है। तो हर बात में बाबा जैसे अचल अडोल रहे, सहनशील रहे, देखना है कि यज्ञ की स्थापना में कितने विघ्न आए। बाबा ने बताया ना, कई लोगों ने अपशब्द बोले, अत्याचार किए, यज्ञ की स्थापना में कई प्रकार के विघ्न आए, ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी आए, कोई ट्रेटर बन गए, कोई छोटी मोटी बातों में असंतुष्ट हो जाते थे। तो इन सबके प्रति बाबा की कैसी भावना रखी, कोई भी बच्चा किसी भी बात में परवश है तो भी कल्याण की भावना, उनको सहनशीलता से, शांति की शक्ति से एक बच्चे को बाबा ने आगे बढ़ाने की भावना रखी। सामना भी किया जिन बच्चों का सामना करने वाले कोई बड़ी मधुरता से, बड़े अंदर उनके जैसे गुड विशेष रही सहनशीलता का पाठ। कोई सामना करते, जो बच्चे बाबा का सामना करते थे तो लेकिन बाबा के हाव भाव को देखकर कल वो क्षमा भी मांग लेते थे, तो उनके मुख से यही मुख से बोल निकलते थे कि बाबा तो बाबा ही। जैसे सुनते हैं ना, है ना, कई बार ऐसे हंगामे हुए इस यज्ञ में भी, बाहर वाले जी भी आते थे ना, कहते थे इनके मम्मा बाबा तो ठीक है लेकिन ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां थोड़े, ऐसे बोलते थे ना, तो बाबा ही है ऐसे कहते थे। और ब्राह्मणों में क्या है, ब्राह्मणों में बाबा तो ब्राह्मण भी ऐसे बोलते हैं कि बाबा तो बाबा ही है। तो सहनशीलता द्वारा बाबा को जो कोई फल बहादुर करना है, ऐसे इनको ऐसे बच्चे बहादुर है। बाबा ने कहा ना, पंजाब है चाहे महाराष्ट्र है, सभी महावीर है, बहादुर है, है ना। किसी को प्यादा बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं, मानेगा ना, सब अपने आप को महावीर समझेंगे। फिर बाबा ने कुमारों से बात की, कुमारों की तीन पार्टियां हैं, कुमारों की विशेषता कौन कौन सी है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार जीवन, तो हम आज ही सवेरे जिक्र कर रहे थे भगवान का। हम सब विशेष करके, वैसे तो हर ब्राह्मण आत्मा की कितना उपकार है कि हम सबको ब्रह्मा कुमार कुमारी बना दिया, सबको बेकारों में जो जीवन डूबा था, संसार के जो गर्त में हम जा रहे थे, माया के चुंगल में फंसे हुए थे, रावण के पंजे में फंसे हुए थे, कितना निकृष्ट जीवन हो गया था, बेकारों से, विकारों के अधीन हो गए थे, विकारों के गोते खा रहे थे, उन्होंने हम सबको कितने गहरे कीचड़ से निकाल कर एकदम ऊपर बिठा दिया एकदम। ऐसे बाबा का कितना शुक्रिया करना चाहिए। आप संसार की तरफ नजर दौड़ाओ और एक ब्राह्मण संसार की तरफ नजर दौड़ाओ, देखिए दोनों में है ना, कहां ब्राह्मण संसार, कहां वो संसार है। वो संसार क्या कर रहा है, ये संसार क्या कर रहा है, इस संसार के कुमार क्या कर रहे हैं, उस संसार के कुमार क्या कर रहे हैं, यहाँ नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और वो के लिए विनाश की संकल्प चलाते रहते हैं, यह स्वार्थ के संकल्प है। यहाँ निस्वार्थ रूप से सारे संसार को नया संसार बनाने के लिए, अनेक आत्माओं के जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अनेक आत्माओं के जीवन को समस्याओं से मुक्त करने के लिए, अनेक आत्माओं के जीवन को भगवान से जोड़ने के लिए, पाप के संग में रंगने के लिए, इतना बता दिया बाबा ने, हमारे जीवन को कितना बदल दिया। तो बाबा ने कुमार कुमारों की विशेषता, कितनी विशेषताएं बताई कुमारों की। कुमार जीवन क्या है, पवित्र जीवन है, महान जीवन है, जहाँ पवित्रता वहां महानता है। संसार में भी देख, संसार में भले वो भगवान के नहीं है लेकिन जो महान आत्मा है संसार में, उनको संसारिक दृष्टिकोण से महान कहा जाता है, जो पवित्र होती हैं, उनको भी लोग कितना मान रखते हैं, उनका कितनी पूजा करते हैं, उनकी कितनी प्रतिष्ठा होती है समाज में। उस सब बच्चे तो भगवान की श्रीमत के अनुसार पवित्र बने हैं, तो हमारी पवित्रता कितनी ऊंची है, क्योंकि हम विधि पूर्व कर रहे हैं और हमको समझ मिली है, बिना समझ के नहीं है। और हमारा बाबा ने ओरिजिनल स्वरूप ही यही है, पवित्र स्वरूप, संस्कार ही हमारे पवित्र हैं, हमारे संस्कारों में पवित्रता है, तो बाबा ने हमको समृद्धि दिलाई। और वो संसार में तो अलग संसार के शास्त्रों के अनुसार रहते हैं। तो कुमार जीवन अर्थात शक्तिशाली जीवन, महान जीवन, पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन है, बंधन मुक्त जीवन है, स्वयं भी बंधन मुक्त बन गए और अनेकों के जीवन को बंधन मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, हर समय संकल्प विश्वास सफल कर रहे हैं, तो दूसरों के जीवन को सफल कर रहे हैं, पवित्र स्वयं भी बन रहे हैं और दूसरों को पवित्र बनाने का पाठ पढ़ा रहे हैं, पवित्रता का महत्व अपने जीवन से दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं, है ना। इतनी बड़ी सेवा के निमित्त बने हो कुमार, असंभव, जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, ब्रह्मा कुमार आप चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे लिए नेचुरल है, पावन बनना कोई बड़ी बात है ही नहीं है, है ना, ये तो क्योंकि सर्वशक्तिमान का साथ है हमारे साथ। तो दुनिया वाले कितना मुश्किल समझते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन पावन बन नहीं सकते जिस तरीके से भगवान पावन बनाता है, क्योंकि हमारे संकल्पों के भगवान ने पावन बना दिया। यहाँ तो पावन बनना अर्थात देह रूपी मिट्टी से भी स्पर्श करना अर्थात अपने संकल्पों से भी स्पर्श करना अर्थात, तो यहाँ तो बाबा ने हमको इस देह रूपी मिट्टी के साथ हमारे संकल्प भी स्पर्श ना हो, इतनी ऊंची पवित्रता का पाठ बाबा पढ़ा रहे, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाबा हमारे अंदर शक्ति भर रहे, नया नया रास्ता दिखा रहे हैं। तो कुमार था चैलेंज करने वाले, परिवर्तन करने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले तो क्या है, साथियों के संग में आते हैं, संग दोष में आ जाते हैं और संग दोष में कितने विकर्म भी कर बैठते हैं, लेकिन बाबा यहाँ हम तो संग में हैं, ना केवल हम हैं बल्कि दूसरों को भी बाप के संग में ले आते हैं, बाप के संग का रंग लगा देते हैं, उनको बाबा समान बनाते हैं। ऐसे हम बाबा के कुमार बच्चे हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमारियां कुमारी ही है, अर्थात सजा अचल अटूट। कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हिमालय जैसे भी, जैसे बाबा ने बताया ना पीछे जिक्र के ना, हनुमान जी जो पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी, हनुमान पहाड़ को उठा के ले आए ना, ऐसे हम पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी जैसे हल्का बना लेते हैं, गेंद की तरह बना लेते हैं। अच्छा, हनुमान जी पहाड़ और संजीवनी लेने गए थे तो वो पहाड़ क्यों लेके आए? तो वास्तव में हनुमान जी भूल गए थे क्या चीज कि मुझे कौन सी बूटी के लिए बोला, क्योंकि वहां गए थे हनुमान जी तो सारी बूटे तो चमक रही है रंग बरंगी एक से एक बढ़कर है, तो हनुमान जी पूछ गए क्योंकि जो बूटी बताई थे भूल गए, जैसे हम लोग मुरले के पॉइंट भूल जाते हैं ऐसे हनुमान जी भी भूल गए होंगे, तो सारे पहाड़ को उठा के ले आए। तो बाबा कहते हैं अरे तुम बच्चे भी पहाड़ जैसी परिस्थिति को गेंद की तरह अनुभव करते हो, क्योंकि शक्तिवान बाबा हमारे साथ हैं, बाबा की शक्ति हमारे साथ में, इसलिए माया अपना चक्कर तो मारेगी आगे पीछे घूमेगी लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि बाबा की सर्वशक्तियों का कवच, बाबा की सर्वशक्तियों की छत्र छाया हमारे सिर पर, उससे सर्वशक्तियों के संग हमारे में समाये हुए हैं, इसलिए माया कुछ कर नहीं पाती है। इसलिए बाबा कहते कुमार अर्थात क्या, सदा एक रस अचल अडोल हलचल में आने वाले नहीं, सदा निरंतर अचल अविनाशी राज्य भाग्य भी वही पा सकता है, अचल अडोल रह सकता है, नहीं तो हलचल में आता तो नहीं पा सकता। ब्राह्मण जीवन में फिर थोड़ा सुख तो मिलेगा माना बहुत ही, अगर बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी अगर तपस्या नहीं करते साधन नहीं करते सुख तो मिलेगा, अविनाशी सुख नहीं समाया हुआ। मंत्री कहते इंद्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होगी, क्योंकि ये सुख जो है ना त्याग मांगता है। कौन सा त्याग? व्यर्थ का, मैंने व्यर्थ से व्यर्थ संकल्पों से किनारा नहीं किया है तब तक जीवन में अविनाशी सुख नहीं आएगा। ऐसे कुमार बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा ने माताओं से, माताओं के भी तीन ग्रुप हैं, तो बाबा ने माताओं को क्या कहा कि माताओं को बाबा ने बहुत सहज मार्ग बताया, कौन सा कि दिल से कहो मेरा बाबा, बस कोई मेहनत नहीं है, बस दिल से बाबा को याद करना है तो सहज याद आ जाएगी, है ना। सारे दिन बाबा कहते हैं जो भी मैं है मेरापन है याद तो आता है ना, चीजों से जुड़ा हुआ है, सारे दिन में मैं और मेरा दो शब्द ऊपर, जैसे हमारी दादी जानकी जी कहते थे मैं कौन मेरा कौन, ऐसे भी हम सारी दिन में मैं और मेरा के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता रहता है। तो जो भी चीजें हैं उन मैं और मेरा में अगर बाबा के ज्ञान को हम समा दें उसमें, तो उन चीजों से भी हम यूज करते हुए ऊपर हम रह सकते। कोई भी चीज को देखेंगे तो जैसे बाबा की स्मृति है, मोबाइल किसका है बाबा का है, है ना, ये टेबल किसकी है या ये सामने सोफे किसके हैं बाबा के हैं, ये संदली किसकी है बाबा की है, क्योंकि बाबा ने हर चीज से को लौकिक से अलौकिक परिवर्तन करने का जो सहज मार्ग थे संडे के मूल्य में था ना, कि अगर घरेलू समस्याएं जो आती हैं उनका अगर समाधान करना है सहज प्रेरणा बाबा से कह चो उसके, बाबा ने कहा लौकिक संकल्पों का ज्यादा चिंतन नहीं करो, लौकिक को अलौकिक पहले कला होनी चाहिए तो हम समाधान कर सके। तो यहाँ भी हमको ये सहज बाबा को याद करने का तरीका उन्हें बता दिया, दिल से कहो मेरा बाबा, मुख से नहीं करना अधिकार से करना, क्योंकि बाबा के ऊपर अधिकार है, बाबा हमारा पिता है, पिता की प्रॉपर्टी हम सब की है, और पिता की प्रॉपर्टी कौन सी है, यहाँ तो सब गुप्त ही गुप्त है, जो भी प्रत्यक्ष में आंखों से दिखाई देती है सबको मिलने वाला नहीं है, अल्प घात का है, अतीन्द्र सुख है, गुप्त ज्ञान से है, गुप्त चिंतन से है, गुप्त योग से है, गुप्त पुरुषार्थ से है, उसमें अविनाशी सुख मिलेगा, जानों के मालिक बन जाएंगे। तो कितनी सहज विधि बता दी बाबा ने, कहा माताएं कितनी पद्मा पद्म भाग्यवान है, ऐसा अपने को समझते हो, घर बैठे भगवान मिल गया कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वालों भगवान को ढूंढते हैं, निकलते हैं कितने भक्ति पाठ पूजा जप तप गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन भगवान मिला हमको नहीं, लेकिन हम बच्चे को कैसे घर बैठे भगवान मिल गया, मिला कि नहीं मिला सबको, माताएं है ना, हमारी माताएं बहुत सेवा करती हैं, हम देखते रहते हैं सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, बस अपनी दिनचर्या प्राय कुरेट चलती है, मधुबन में आने का पूरा फायदा लेती है, और बाबा तो ऐसी आत्माओं के ऊपर ऐसी माताओं के ऊपर इतना प्यार देखते हैं, बाबा के कमरे में भी सवेरे देखते हैं तो बाबा के कमरे में माताएं बैठी होती हैं, शक्तिशाली वाइब्रेशन का अनुभव होता है वहां भी, माताएं वहां चक्कर लगा रही हैं बैठी हैं, या कोई कोई माता चिंतन कर रही होती है, तो ये सब चीजें हमें जैसे एक प्रेरणा देती हैं। ऐसा नहीं है माताएं कि आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ क्लास नहीं कराती हैं, आप सिर्फ सेवा करती हैं, नहीं, आपकी हर एक्टिविटी से हर आत्मा कुछ, क्योंकि हम जिस पर भी हमारी दृष्टि जाती है तो कुछ ना कुछ सीख, सबसे पहले सबकी आंखें, बाबा कहते हैं ना आंखें बहुत धोखा देती हैं, इन आंखों को अगर हम सिविलाइज बना दें, तो इन आंखों से जो भी हम देखते हैं किसी के जीवन में को हम देखते हैं, और जो वो कर्म कर रहा है चाहे उस वाणी से क्या बोल निकल रहे हैं, हाथों से क्या कर्म कर रहा है, या जो कहे वो बाबा के कमरे में बैठा हुआ है, या चाहे शांति स्थान स्त्री हाल बैठा हुआ समझ लिए कुटिया में कहीं भी बैठा हुआ योग में बैठा हुआ है या कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बड़ी सूक्ष्म सेवा और ये शक्तिशाली सेवा, और इससे ना केवल योग करने वाले की वृत्ति बदलती है बल्कि जो उनको देखता है उनकी भी वृत्ति बदल जाती है, उनकी भी वृत्ति मौज वाली हो जाएगी, मूंझने वाली नहीं। जो हम सब देखते हैं अगर कोई घूमता रहता है ऐसा है
तो देखते हैं, मूंझते हैं, खुद भी मूंझते हैं, दूसरे वाले के जीवन को मूंझाते हैं। अंदर मन में तो संकल्प चलता ही ना कि देखो भगवान का बनने के बाद भी कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, मूंझा दिया ना उसने, भले सामने वाला अच्छा पुरुषार्थ करा लेकिन एक सेकंड में तो संकल्प तो चल गया ना, तो संकल्प चलाने के निमित्त भी बन गया ना, तो उसका तो कितना बोझ चढ़ जाता है उसके ऊपर। भले कोई अच्छा पुरुषार्थी है उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेगा, बताया ना बाबा ने कि दुश्मन है कोई, कैसा भी है कोई कैसा है, लेकिन उसको भी शुभ भावना शुभ कामना रखी, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। लेकिन बीच में जो थोड़ा सा टाइम गया, चाहे 2 सेकंड 4 सेकंड, जो संकल्प चला, संकल्प का बोझ तो उसका था। इसलिए कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है, बाबा हमको कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान देकर हमारे जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। तो दुनिया वाले ऐसे भगवान को ढूंढ रहे हैं और हम सब उस भगवान के सन्मुख बैठ, कितनी ऊंची हमारी तकदीर है, कितना ऊंचा हमारा भाग्य है कि निरंतर बाबा के प्रधानी हाथ हमारे सिर पर है, बाबा की रूहानी दृष्टि, प्रधानी दृष्टि, बाबा के नजरों से जो हम निहाल हो रहे हैं, भाग्य किसको मिलेगा। और हम सब हर ब्राह्मण आत्मा अगर इन सब बातों को स्मृति में रखते हैं तो पद्मा पद भाग्यवान का हम अनुभव करते हैं। हमारे पूर्वज, हमारी दादियां, उनके सारे दिन में अगर हम किसी न किसी का चरित्र पढ़ते रहे, त्यागी तपस्वी आत्माओं का जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सहनशील जीवन में, जैसे बाबा का हिम्मत का बताया ना दूसरा कदम सहनशीलता, तो ऐसे हमारी दादियां भी तो ऐसी रही ना, ब्रह्मा बाप समान। एक एक दादी के जीवन में जितनी भी दादियों को हमने इन आंखों से देखा है, तो हर एक दादी में वो सारे ब्रह्मा बाबा के गुण जो परिलक्षित होते थे, ब्रह्मा बाबा के संस्कार दिखे, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार उन्होंने अनेक आत्माओं की पालना की, अनेक आत्माओं के जीवन को मौजों से भरपूर कर दिया, मूंझनों से मुक्त कर दिया, जिन आत्माओं की वृत्ति मूंझी थी उनको भी मौज वाली वृत्ति बना दिया। बाकी इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य हैं जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे घर बैठे भगवान मिल गया, ये कोई सहज बात क्या है, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य हो, इस भाग्य को सदा स्मृति में रखना है, भूलना नहीं है, आगे बढ़ते चलो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, खुशी के गीत गाते चलो, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह पूर्वज, वाह वाह पुरुषोत्तम संगम युग, वाह, कितने सारे बाबा के गीत गाते रहे है ना, वाह मेरी तकदीर, वाह बाबा का यज्ञ, वाह बाबा की सेंटर, वाह बाबा के बच्चे, वाह बाबा की सेवा, ऐसे गीत लिखिए है ना, कम से कम 100 शब्द लिखो उसके। तो एक अपना स्वरचित गीत करना है, दूसरे के गीत तो सुनते हैं हम, लेकिन जो स्वरचते हैं हम, अर्थात जो हम स्वयं चिंतन करते हैं, और जब हम चिंतन करने लगते हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। जिनका मुख चलता नहीं है वो भी चलने लगे, खुल जाएगा। एक कदम अगर हिम्मत रखेंगे तो बाबा कहते ना हजारों कदम मदद के लिए तो बंधा हुआ हूँ, और बाबा हमारी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत रख के आगे कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ओ ऐसे बाबा के साथ हमको मौज से रहना है। अच्छा एक पैरा और भी है अभी, तो फिर बाबा किससे मिले, शक्तियों, तीसरा ग्रुप बाबा का, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है, बाबा पूछ रहे ना, बाबा ने पूछा ना, शक्तियां अर्थात सदा बाप के साथ रहने वाली, सदा कंबाइंड बाबा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली, बाप और आप बस दोनों को मिलाकर कहते शिव शक्ति। तो ऐसे निर्बलता खत्म हो जाएगी, जिनको जिन माताओं को संसार ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या कहा, बाबा ने उन निर्बल आत्मा को शक्तिशाली बना दिया, शिव शक्ति बना दिया है ना। तो बाबा कहते सदा याद रखो कि हम कंबाइंड हैं, बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, है ना, वो संसार में ढूंढने वाले नहीं हैं, अभी हम साथ रहने वाले हैं, संसार वाले ढूंढ रहे हैं, तो कितनी ऊंची खुशी रहेगी, कितना नशा रहेगा है ना, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन जब हम बाबा की साथ कंबाइंड रहेंगे, शिव शक्ति के स्वरूप में रहेंगे, तो माया कुछ नहीं कर सकती। माया आती कब है, जब हम आपको भूल जाते हैं, बाबा की बातों को भूल जाते हैं, मुरली के पॉइंट को भूल जाते हैं, योग का अभ्यास नहीं करते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, या कहीं कहीं मन को अपने उलझन में रखते हैं, कनेक्शन लूज हो जाता है, तो हम जैसे से दूर हो जाते हैं, फिर माया अटैक कर देती है। तो सारे दिन में हम किसी न किसी तरीके से बाबा से जुड़ रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने के उपाय ढूंढने हैं, तरीके ढूंढने, तलाश नहीं है पाए कि कैसे हम किसी न किसी तरीके से बाबा की याद में रहें। याद सेवा में भी याद समाई हुई है, ज्ञान में भी याद समाई हुई है, योग में भी याद समाई हुई है, जो धारणाओं के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें भी याद समाई है। तो याद मुश्किल नहीं है, जो भी हम सारे दिन में कर रहे हैं अगर उसमें बाबा के संकल्प अगर हम चला रहे हैं मन बुद्धि में, तो वो बाबा की याद जैसे, तो ऐसे बाबा की सफलता कंबाइंड रहना। एक बाबा ने विधि बताई कौन सी अवस्था से क्या होगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो बाप से हम इतने सारे माँ बाप के, बाबा के हम सब बच्चों के प्रति प्यार भरे माँ बाप के हैं, कल्याणकारी माँ बाप के हैं, है ना।
तो इन महावाक्यों को हमको अपने जीवन में हमेशा किसी ना किसी तरीके से, पहले कौन मिला किसे, माइटी अथॉरिटी बाप किससे मिले, सबसे पहले श्रेष्ठ रत्न तो ब्राह्मण ही है, लेकिन उसमें पहली रचना आदि पिता ब्रह्मा बाबा, और जिनका बाबा ने कहा यादगार भी माउंट आबू में, आबू पर्वत में कहा दिलवाड़ा मंदिर में, और दूसरा एक तो ये नई सृष्टि के आदि देव हुए, और ब्राह्मणों की सृष्टि के भी, ब्राह्मणों की सृष्टि के आदि देव प्रजापित ब्रह्मा हुआ, और नई सृष्टि के आदि देव श्री कृष्ण देव के रूप में, और फिर कर्मातीत फरिश्ता में भी आदि आदि देव बन के रहे, वो भी सबसे पहले कर्मातीत फरिश्ता की जो स्थिति हम सबके सामने बनाए किसमें, फिर बाबा ने समर्पणता का जिक्र किया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने समर्पणता की, तन मन धन से संबंध संपर्क हर चीज में बाबा ने हर चीज, फिर बाद में अपने लिए कुछ कितनी बड़ी कितना बड़ा बलिदान है कि बाबा ने एक बार सारा एक में समर्पण किया, बाद में अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, दूसरा कदम अब सबसे ज्यादा संसार में हम देखते हैं चिंता किसमें ज्यादा आती है, मातों में सहनशीलता होती है ना, माताओं को जीवन में कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बच्चों को पालने में कितना सहन करना पड़ता है, अपनी नींद का त्याग करना पड़ता है परिवार की पालना के लिए, चाहे बच्चे हैं या घर के अन्य परिजन भी होते हैं, तो कितनी बातों को समाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, इसलिए बाबा ने विश्व कल्याण का जो कार्य है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य है, इसके ऊपर कलश रखा, विशेष सहनशीलता की मूर्तियां हैं मंदिरों में देखते ना, ज्यादा भी पूजा किसकी होती है, देवियों की होती है, माताएं भी कम नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहनशीलता का पाठ अपने जीवन से सबको पढ़ाया, ऐसे भी माताएं भी सबको सहनशीलता का पाठ अपने जीवन से पढ़ाती रहती हैं, तो कितने सहन किया बाबा ने, गालियां खाई, जो सर्व सर्व के स्नेही थे फिर दुश्मन भी बन गए, जो पहले प्यार से बोलते थे बाद में दुश्मन के रूप में से गालियां निकालते थे, कि बरसात भी होती रही लेकिन बाबा एकदम मुस्कुराते हुए जैसे जीवन में आगे बढ़ते गए, तो ये बाबा के जीवन से हमको अनेक प्रकार की बातें सीखने को मिलती है, तो ये फिर बाबा सहनशीलता के आगे, बाबा ने पता है सहनशील जो होंगे वो क्या होगा, वो घबराएंगे नहीं, वो सहनशीलता वाले तो घबराएंगे नहीं, गहराई में जाएंगे, मूंझेंगे नहीं, मौज में रहेंगे, पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी गेंद समान अनुभव करेंगे, है ना, और औरों की जीवन को भी मौज का अनुभव कराएंगे, जिसकी वृत्ति मूंझी हुई भी उसको भी मौज में ले आएंगे, तो सहनशीलता के अनेकों फायदे हैं, तो हमको चिंतन करना है, सहनशीलता अर्थात ऐसा नहीं कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, नहीं, चाहे कोई हमको गाली दे, कहते हैं निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख लाभ हानि सब में एक समान, तो ये सहनशीलता के, हम सभी बाबा की सहनशीलता के अवतार बच्चे हैं, तो हम सब के अंदर वो शक्तियां हैं, लेकिन समय प्रभु काम में आए, इसलिए हमारा निरंतर बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहे, और हमेशा हम अपने आप को बाबा की सर्व शक्तियों से जब चार्ज करते रहेंगे, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम उसमें घबराएंगे नहीं, बल्कि गहराई में चले जाएंगे, फिर गहराई में जाने से माया कुछ कर नहीं पाएगी, है ना, बताया जिसमें बाबा ने एग्जाम्पल बताए 14 साल कैसे मौज में रहे, बच्चों से गोबर के गोले भी बनाए, मैकेनिक भी बनाया, माली भी बनाया, चप्पल भी सिलाए, मोची भी बनाया, जो नाज से पलने वाले थे उनको ये सब काम करने पड़े, लेकिन खुशी खुशी मौज किया, क्योंकि बाबा ने इतना प्यार बरसा दिया उन आत्माओं के ऊपर, अपने जीवन चरित्र से इतना कुछ सिखा दिया कि उन छोटे छोटे बच्चों ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, जैसे कि जो बाबा का कार्य है वो हम बच्चों का कार्य है, तो इससे मौज का जीवन है, मूझने वाला नहीं है, माता को भी बोला ना बाबा ने दिल से तो मेरा बाबा मौज में ब्रह्मा कुमार अर्थात मौज का जीवन, चाहे स्टेज पर स्पीच करने वाले हों, चाहे कोई स्थूल सेवा हो, कोई कार्य में कोई सेवा में टीका टिप्पणी, जो कहा जी बाबा, हाँ जी बाबा, आज हम अपने वरिष्ठ भाई बहनों को देखते हैं, उन्होंने भी यज्ञ को कितने अपने कहेंगे पुरुषार्थ से सींचा है, आगे बढ़ाया, अनेक आत्माओं की जीवन को मौजों से भरा हुआ है, अनेक आत्माओं के जो जीवन मूंझा हुआ था उस मूंझ से उन आत्माओं को निकाला हुआ है और सेवा के निमित्त बना दिया, एक एक आत्मा की जो ब्राह्मण आत्माओं के बाबा कितना अगर शास्त्र लिख के जाए तो कितने इसके शास्त्र बन जाएंगे, तो ये सब बातें सीखने वाली हैं। फिर बाबा ने कुमारों से बात की, कुमार अर्थात क्या, श्रेष्ठ जीवन वाले, शक्तिशाली जीवन वाले, पवित्र जीवन वाले, महान जीवन वाले, है ना, असंभव को संभव करने वाले, चैलेंज करने वाले, अचल अडोल एक रस, कभी हलचल में नहीं आने वाले, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले, तो ये सब बाबा ने
हम सब के अंदर कितना कितना नशा भर दिया, हम सब आत्माओं को ऊंचा श्रेष्ठ बना दिया है ना। माताओं से बात दिल से सहज मार्ग बताया दे, कौन सा दिल से कहो मेरा बाबा ना, तो सारे खजाने माताओं के पदमा पदम भाग्य बनात में घर बैठे भगवान मिल गया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, संसार वाले ढूंढ रहे हैं लेकिन आप आत्माओं को घर बैठे भगवान मिल गया, संकल्प में भी नहीं था तो सब चीजें मिल गई, कितने सहज जीवन हो गया, शिव शक्ति बना दिया, सदा कंबाइंड में रहो, मौज में रहो, जहाँ कंबाइंड है तो माया आ नहीं सकती है, मुरली है। ऐसे बाबा के शक्तिशाली बच्चों को, पवित्र बच्चों को, आलमा अथॉरिटी की छत्रछाया में रहने वाले बच्चों को, सहनशीलता के अवतार बच्चों को, समर्पित बच्चों को, असंभव को संभव कर दिखाने वाले बच्चों को, चैलेंज दूसरे के जीवन को भी ऐसा बाप के संग में रखने वाले बच्चों को, और कौन से हाँ पद्म पद्म भाग्यवान आत्माओं को, और दिल से कहो मेरा बाबा ऐसी आत्माओं को, और सदा अचला डोल रहने वाले को, और एक स्थिति वाले बच्चों को, और ऐसे अनेक प्रकार की आत्माओं को, महान आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।